ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी का हमारे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं यहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पूजा पाठ जप तप या कोई शास्त्र पठन पाठन या कोई भी प्रकार का भक्ति भाव उस रूप से, कोई पूजा स्थान उस रूप से नहीं है। ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और जैसे एक विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, वैसे यहाँ भी ये पढ़ाई चल रही है। और हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, वहाँ तो डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे, यहाँ हम कहते हैं कि इस पढ़ाई से हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। और ये भारत भूमि जो अभी कलयुग के अंत में हम देख रहे हैं स्थिति, यही बदल कर फिर सतयुगी दैवी सृष्टि बनी बनेगी, फिर से वही सतयुग आएगा इस कलयुग के बाद, तो वो तो कुछ बातें हैं। लेकिन कईयों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये संस्था शुरू कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई और अब तक क्या जो चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा भव्य रूप देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं, तो ये कब और किसने शुरू किया, तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो जिस स्थान पर आए हैं हम इसको कहते हैं ये भगवान ने एक यज्ञ रचा है। तो यज्ञ में बहुत बड़ा काम होता है, कोई लक्ष्य से यज्ञ रचा जाता है, कोई आपत आती है तब यज्ञ रचते हैं। तो भगवान ने ये यज्ञ रचा है क्यों, ताकि ये जो कलयुगी सृष्टि है ये बदल कर और सतयुगी सृष्टि इस धरा पर आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा वो अब आपको बताएंगे। तो इसकी शुरुआत किसने की, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वो अद्भुत जीवन कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा वो निराकार परम पिता परमात्मा ने ये कार्य आरंभ किया और उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। वैसे ब्रह्मा को हम रचयिता मानते हैं, ब्रह्मा द्वारा भगवान ने सृष्टि रची, तो वास्तव में कोई ऐसे नहीं कि दुनिया थी नहीं और ब्रह्मा को रचा और फिर सृष्टि रची। ये संसार तो सदा है ही है, 5 तत्व सदा है ही है, लेकिन ये परिवर्तन होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, वैसे ये संसार एक चक्र के रूप में है। तो अब वो रात की भी अंत है, तो जैसे रात को सुबह करने लिए सूरज को प्रकट होना होता है, तो परमात्मा भी ज्ञान सूर्य बन करके कैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा फिर से वो नई रोशनी सृष्टि में ला रहे हैं, जिससे यह संसार बदल कर सतयुग बन जाए। तो जिसको परमात्मा ने ये नाम दिया प्रजा पिता ब्रह्मा, और इन्होंने एक बीज डाला अपने तन मन धन का, और आज हम देख रहे हैं एक वट वृक्ष के रूप में करीब हमारे 140 देशों में हजारों ब्रांचेस हमारी देश विदेश में चल रही है और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है और आप जैसे लाखों परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी बन करके हमारे विभिन्न सेवा केंद्रों पर आकर के लाभ लेते हैं। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा? इनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से वो एक बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। हीरे जवाहरातों के जेवर बनाते थे। उनकी बहुत बड़ी शोरूम थी कलकत्ता में। तो हैदराबाद सिंध में रहते थे और कलकत्ता में उनकी जो दुकान थी वहाँ आया जाया करते थे। तो उस समय तो सिंध भी भारत का हिस्सा था। तो 1936 में जब इनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी, वो उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया वो हम आपको सुनाएंगे, ताकि उनके जीवन के परिवर्तन से हम सबका जीवन कैसे बदल गया वो आप सुनेंगे। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनका परिवार था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे और 60 वर्ष की आयु में माना लगभग सबकी शादी भी हो गई थी, तो इनके पोतरे दोतरे सब थे। तो बड़ा परिवार था और कैसे बहुत बड़े दानी थे। दान पुण्य उनके जीवन में चलता ही रहता था। कोई भी उनके द्वार पर आता था कभी हाथ खाली नहीं जाता था। गरीबों को तो बहुत दान करते थे। साधु संत महात्माएं भी उनके द्वार पर आते थे और वो सत्संग करवाते थे। तो जितने ही धनी थे उतने ही वो दानी भी थे और उतने ही बहुत बड़े भक्त थे। विष्णु की भक्ति करते थे। तो पूजा पाठ तो उनके जीवन का एक अंग था। रोज सवेरे बिना नागा नाए ना धोकर कुछ मुंह जूठा किए बिना कैसे विष्णु की पूजा करते थे, गीता का पाठ करते थे। परंतु उनके जीवन में एक कमी क्या महसूस हुई उनको, कि वो सत्यता की खोज में थे। सत्य क्या है, हम कौन है, ईश्वर कौन है, ये संसार क्यों भगवान ने बनाया, इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, अगर ईश्वर की दुनिया है उसने रचा तो इतना दुख क्यों है, वो तो सुख का सागर है। तो कई प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते थे और उसके लिए कई शास्त्र पढ़ डाले, अनेक गुरुओं के पास जाते थे, लेकिन कहीं भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो वो महसूस करते थे कि आखिर हमें सत्य की पहचान कैसे होगी। तो विष्णु की भक्ति तो करते थे लेकिन सत्यता की खोज थी। तो कैसे अचानक एक दिन उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उनके ही भक्त थे, विष्णु उनके इष्ट थे। तो विष्णु का उनको साक्षात्कार हुआ और उन्होंने अनुभव किया कि 4 भुजाधारी विष्णु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आके उपस्थित हो गए और दर्शन दिए और उनको एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ तुम भी मेरे समान हो। अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और बाबा ने बहुत अनुभव किया साक्षात्कार में विष्णु के कई रूप, क्योंकि कितने मंदिर है विष्णु के, तो वो सारे रूप जैसे उसके सामने आते गए और बाबा ने अनुभव किया कि कैसे वो रूप उनके सामने आकर के उनको वही वरदान दे रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो जब वो ध्यान से नीचे उतरे तो उनके मन में प्रश्न उठा कि ये कैसा वरदान मिल गया मुझे, क्योंकि जब भी किसी को अपने इष्ट का दर्शन होता है, बहुत होते हैं इष्ट के दर्शन, तो वो जो इष्ट उनका होता है उनसे जो वरदान मिलता है वो क्या मिलता है, तथास्तु, माना आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि बहुत इच्छा से भक्ति करते हैं, बहुत प्यार श्रद्धा से करते हैं, तो उनको दर्शन होते हैं उस इष्ट के, तो उनको वरदान मिल जाता है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब ब्रह्मा बाबा को कोई वो इच्छा तो नहीं थी कि मुझे कोई संसारी सुख चाहिए, वो तो कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सत्य को जानने की इच्छा जरूर थी। तो जब उनको ये वरदान मिला कि मैं चतुर्भुज, तुम भी मेरे समान हो, तो बाबा की बुद्धि चलने लगी, मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, सेवक हूँ, यही समझते हैं सब अपने आप को, ये तो मेरे इष्ट है, मेरे भगवान है, मैं थोड़ी ये हूँ। तो ये प्रश्न उसके मन में चलता रहता था। तो अपने गुरु के पास गया और गुरु से ये प्रश्न किया कि मैं इन जैसे कैसे हूँ। तो गुरु को भी इतना कुछ समझ में नहीं आया कि इसकी इसका क्या अर्थ होगा, लेकिन ये जरूर कहा कि हो सकता है कि भगवान को आपका आप भगवान को आपसे बहुत बड़ा काम करवाना है, इसीलिए भगवान ने कहा आप मेरे जैसे हो। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न हो गया इनके मन में, भगवान को मेरे से क्या काम करवाना है, मैं तो एक साधारण भक्त हूँ, भले बिजनेसमैन हो तो भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, भगवान का मैं कौन सा काम कर सकता हूँ। तो गुरु ने उनको राय दी कि तुम एकांतवास में चले जाओ, ऐसे एकांत में चले जाओ तो तुमको और अनुभव होंगे और भगवान से आपको कुछ आदेश मिलेगा कि आपको कौन सा काम भगवान का करना है। तो बाबा ने सोचा मैं एकांतवास में कहाँ जाऊँ, क्योंकि बिजनेसमैन थे, बहुत उनकी जिम्मेदारी थी, परिवार था, समाज था। तो उसने सोचा थोड़े दिन के लिए मैं बनारस जाता हूँ। तो बनारस में उनके मित्र रहते थे जो उनको निमंत्रण देते रहते थे कि आप आइए, थोड़ा यहाँ विश्राम कीजिए। तो बाबा बनारस गए कुछ समय के लिए कि मैं बनारस में जा करके ध्यान करूँगा विष्णु का, ताकि मुझे कुछ और प्रेरणा मिल सके कि भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं। तो बनारस में जैसे बाबा गए तो वहाँ विष्णु का ही ध्यान करते थे कि एक दिन बाबा को इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। कैसे ये कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है ये बाबा ने देखा, जिसमें तीन रूप देखे विनाश के। एक रूप देखा अणुयुद्ध के रूप में, अणुयुद्ध कैसे बॉम्ब से एक दो पर फेंक रहे हैं और जहाँ बॉम्ब गिरता है वहाँ नाश हो जाता है, तो एक अणुयुद्ध के रूप में बाबा ने देखा विनाश। फिर दूसरा सिविल वॉर, ग्रह युद्ध के रूप में विनाश देखा, कैसे एक दो को मार रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, बंदूकें चल रही है, तलवारें चल रही है, और कैसे एक दो की हत्याएं कर रहे हैं और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और फिर देखा कि एकदम सब धराशायी हो गए, सब मर गए, और खून की नदियाँ चारों ओर बह रही है, ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा। फिर थोड़े समय के बाद बाबा को तीसरा विनाश का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने पांच तत्व प्रकृति का प्रकोप देखा। तो कैसे भूकंप, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, और पांचों ही तत्वों ने कहर मचाया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो चारों तरफ ये प्रकृति का प्रकोप बाबा ने देखा और फिर देखा सब कुछ नष्ट हो गया, सारी दुनिया, सब कुछ खत्म। तो प्रलय जैसी स्थिति हो गई। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो कहा कि हे भगवान, ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी तो फिर भगवान आपने बनाई क्यों, फिर ये प्रश्न उठा। फिर दूसरा प्रश्न उठा कि फिर मुझे क्या करना है। मुझे गुरु ने कहा कि भगवान को आपसे कुछ बड़ा काम करवाना है, तो वो कौन सा काम करवाना है वो भी मुझे मालूम हो, और फिर क्या इस सृष्टि का हाल होगा, सब खत्म ही हो जाएंगे तो मुझे क्या काम करना होगा। तो कुछ समझ में नहीं आया, भले साक्षात्कार भी ये सब कर लिए, लेकिन उनके अंदर में एक परिवर्तन आ गया। क्या बड़ा परिवर्तन आया, उनके जीवन में बहुत बड़ा वैराग्य आ गया। तो जो उनको वो धन दौलत या जो कुछ भी मान सम्मान उनको मिलता था, उससे बिल्कुल वैराग आ गया। तो बिजनेस से भी वैराग आ गया, बिल्कुल। अब वैराग आ गया तो क्या करेंगे, तो उन्होंने सोचा अब मैं ये सब बिजनेस सब वाइंड अप कर रहा हूँ। तो उस वैराग्य के कारण वो बनारस से कलकत्ता गए, जहाँ उनका पार्टनर रहता था। तो उस पार्टनर को सब कुछ बता दिया और कहा कि अब मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है। क्या काम दिया ये पता नहीं। तो क्या है कि विनाश का जब साक्षात्कार हुआ बाबा को, तो वैराग्य तो आ गया, लेकिन उसके बाद कलकत्ता जाने से पहले उनको और भी बहुत साक्षात्कार हुए। एक तो उनको परमधाम का साक्षात्कार हुआ, पर उन्होंने देखा कैसे एक सफेद, एक लाल रंग का गोल्डन रेड कलर की एक दुनिया, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश के अंदर छोटी छोटी आत्माएं, वो कैसे एक उल्टे झाड़ की तरह वो वहां पर उस प्रकाश में है। और फिर देखा कि कैसे उस प्रकाश की दुनिया से वो सितारे जो देखे, वो छोटे छोटे सितारे, वो उस पेड़, उस आत्माओं के या सितारों के पेड़ से वो नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरते उतरते बाबा ने देखा वो धरती पर आ रहे हैं, और धरती पर जैसे ही उतरते हैं वो एक एक ज्योति, वो एक देवी और देवता का रूप धारण करती जा रही है। और देखते ही देखते बाबा ने देखा सारी सृष्टि बदल गई, पूरी सृष्टि बदल गई, और पांचों ही तत्व अपने सुंदरतम सतो प्रधान स्थिति में थे। हरियाली चारों ओर हो गई और इतना सुंदर वातावरण, और उसमें देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं और रास लीलाएं चल रही है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। और फिर बाबा ने देखा एक सुंदर सुनहरी महल, सोने का महल जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, और उस महल में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण वो सिंहासन पर विराजमान हैं, और धीरे धीरे वो महल से बाहर आ रहे हैं। और जैसे बाहर आते हैं तो फव्वारे चल रहे हैं, फाउंटेन चल रही है, सुगंध ही सुगंध चारों ओर, खुशहाली खुशहाली। और एक आवाज उनको आई, वो आवाज एक आकाशवाणी के रूप में थी। क्या थी आवाज, क्या शब्द थे, लखीराज उठो जागो, अब इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी सृष्टि आने वाली है जिसमें मानव देव बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नारी श्री लक्ष्मी बन जाएगी, ये संसार सतयुग बन जाएगा इस कलयुगी दुनिया के विनाश के बाद। और ये दुनिया तुमको बनानी है, ये भगवान ने काम दिया उनको। तो जैसे भगवान ने एक बड़ा काम दिया कि ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है, तो जब ये सब साक्षात्कार हुए तो उनको ये ख्याल आया कि ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसी क्या शक्ति है मेरे पास जो मैं दुनिया को बदल करके एक सतयुगी दुनिया बना सकूं, पर उसके लिए क्या करना होगा ये तो बताया नहीं। लेकिन वैराग्य जो उनको आ गया, ये उसके कारण उन्होंने सोचा कि अगर मैं बनारस में हाथ पर हाथ धर के बैठा रहूंगा तो भगवान का तो कुछ भी काम नहीं कर सकूंगा, तो मैं कलकत्ता जाकर पहले बिजनेस वाइंड अप करता हूँ। तो बाबा कलकत्ता गए और बिजनेस वाइंड अप करके वापस हैदराबाद सिंध चले गए। तो तो जो उनका उनकी उनका हिस्सा था वो सब लिया और बाकी दुकान पार्टनर को दे दिया और बाबा न्यारे होकर अपने हैदराबाद सिंध चले गए। तब तो सिंध भी भारत का हिस्सा था। तो जब वापस हैदराबाद सिंध गए तो बाबा को इतना सब साक्षात्कार विनाश का, नई दुनिया का, पर आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं चला। तो लेकिन जो वैराग आ गया उसके कारण उनका जीवन बदल गया और वो जो उनका ठाट था, बिजनेसमैन थे, वो सब बदल गया और बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ता बस वही पहनते थे। 60 वर्ष की तो उनकी आयु हो ही गई थी और बिल्कुल घर में एकांत में रहने लगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करना और अपने इष्ट का ध्यान करना। तो एक दिन बहुत एक चमत्कार जैसा हो गया, बाबा को निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, दिव्य ज्योति एकदम वो एक ऐसी श्रेष्ठ ज्योति बाबा ने देखी। और धीरे धीरे बाबा ने देखा कि वो जो प्रकाश है, जितना तेजोमय प्रकाश, वो उनके नज़दीक आया और नज़दीक आकर के धीरे 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 उनमें प्रवेश हो गया। मानो शिव परमात्मा ने अपना साक्षात्कार करा करके उनके तन में वो प्रवेश हो गए और बिल्कुल उनका ललाट इतना चमकने लगा, अपना चेहरा इतना तेजोमय हो गया और आँखें इतनी लाल लाल हो गई, जो बाबा का पूरा जैसे व्यक्तित्व ही बदल गया वो साक्षात्कार बाबा ने किया। और जब वो बिल्कुल वो ध्यान से उतरे तो उनके जो परिवार वाले थे, क्योंकि घर में ही था, अपने ही रूम में बैठे थे, तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने बताया, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेजोमय थी और वो मेरे सामने आई और मेरे में समा गई। बस ये बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। लेकिन उसके बाद बहुत चमत्कार होने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उस समय जो शिव परमात्मा की प्रवेशता हुई तो उस तो शिव परमात्मा ने अपनी पहचान, अपना परिचय उनके मुख से दिया, जैसे कोई आकाशवाणी उनके मुख से निकल रही हो, जो उनके रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने सुना। और वो आवाज़ क्या थी? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ। शिव परमात्मा ने अपना परिचय उनके मुख से दिया। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। ये परमात्मा ने अपना परिचय उनके मुख द्वारा दिया। और फिर उसके बाद जब ध्यान से नीचे उतरे तो चमत्कार क्या हुआ कि बाबा खड़े होते थे, सफ़ेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता पहने हुए, और जैसे बाबा सबको देखते थे तो बाबा का रूप बदल जाता था और बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। बाबा खड़े हैं सफ़ेद वस्त्रधारी, अचानक वो रूप बदल करके श्री कृष्ण का रूप, वो मोर मुकुटधारी और पीताम्बरी पहन करके खड़े हैं और बांसुरी बजाता हुआ, ये लोगों ने देखा उनसे, तो एक चमत्कार हो गया। और इतना चमत्कार हुआ जो ये देश विदेश में ये न्यूज़ फैल गई। विदेशों में भी टाइम मैगजीन जो अमेरिका से निकलती है उसमें भी ये न्यूज़ आ गई कि भारत में हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है और उसके पास चमत्कारिक शक्ति है, जो उनका जो भी दर्शन करते हैं उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो लोग बहुत आने लगे देखने के लिए कि कैसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है इनको देख करके। तो वो कृष्ण के भक्त तो थे ही, तो जैसे बाबा के सामने आते थे तो बाबा से वो अनुभव जो करते थे उससे एकदम जैसे वहीं के हो जाते थे। और उनको कईयों को तो और आगे भी साक्षात्कार होता था, कईयों को घर बैठे भी साक्षात्कार होने लगा, एकदम जैसे क्रांति फैल गई। तो घर बैठे साक्षात्कार क्या हुआ, उनको ये अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण उनके सामने आ गए और श्री कृष्ण से वो मिलना चाहते हैं, परंतु जैसे उसके नजदीक जाते हैं तो बाबा ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता पहने हुए उनके उनके आगे खड़े हैं और श्री कृष्ण पीछे से इशारा करता है कि मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ। अब ये कौन है ये तो सब किसी को खास तो पता नहीं था, बस जिसको पता चलता था वो आते थे बाबा के पास। तो बाबा रोज सत्संग कराते थे, रोज ओम की ध्वनि करते थे और ओम की ध्वनि करते थे और ये साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाता था। कईयों को वहाँ बैठे भी श्री कृष्ण के ध्यान में चले जाते थे और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने लगे। तो एक सचमुच बड़ी क्रांति हो गई थी हैदराबाद सिंध में, ये 1936 की बात है, आज से 90 साल पहले। तो दूसरी क्रांति क्या हुई कि उसमें भी जो महिलाएं थी लेडीज, वो महिलाओं को ज्यादा साक्षात्कार हुए, पुरुषों को कितना नहीं हुआ लेकिन फीमेल को ज्यादा हुआ। वो घर बैठे भी उनको हुआ और कैसे बाबा के पास वो खींचती हुई चली आई। तो उनमें से कुछ एक का मैं से मिसाल दूंगी, ये ओम राधे है, उनका नाम राधे था। तो वो स्कूल पढ़ती थी और उनके पिता की डेथ हो गई थी तो इनकी माँ जो थी वो बहुत रोती थी, बहुत दुखी थी। लेकिन किसी ने इनको कहा कि अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ तो इसका रोना बंद हो जाएगा, उनको शांति मिलेगी, क्योंकि कृष्ण की भक्ति भी करती थी। तो अपनी माँ को ये बाबा के पास ले गई और जैसे इनकी माँ ने बाबा को देखा तो बाबा में श्री कृष्ण देखा और कैसे एकदम चिपक गई उनको और हंसने लगी जोर जोर से। जो रोती हुई आई थी बाबा के पास वो हंसने लगी। तो ये भी एक न्यूज़ बन गई क्योंकि राधे जो थी वो हैदराबाद सिंध में काफ़ी फेमस थी, बहुत उसमें विशेषताएं थी, कलाएं थी, गीत बहुत गाती थी, संगीत कला, नृत्य कला, गायन कला, बहुत स्कूल में अवार्ड्स लिए थे, तो इसीलिए वो उसका नाम तो बहुत था हैदराबाद सिंध में। लेकिन अब उसकी माँ का भी नाम हुआ कि वो माँ को लेके गई और दादा लेखराज को देखा और रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, मतलब ये भी एक न्यूज़ बन गई। तो परंतु उनके पिता ने तो शरीर छोड़ा था, बिजनेस उनकी बहुत बड़ी थी और उसने दिवाला मार दिया बिजनेस में इनके फादर ने, तो बिल्कुल जैसे कंगाल हो गए थे, घर दुकान सब सब कुछ उनको देना पड़ा और एकदम जैसे गरीब हो गए थे। तो बाबा को पता था क्योंकि वो भी उनके फादर भी हीरे जवाहरात का ही बिजनेस करते थे, ज्वेलरी का। तो बाबा ने क्या कहा, इनको अपने पास रख दिया क्योंकि इनका तो घर तो था ही नहीं, इनके मामा के पास रहने लगे क्योंकि घर भी देना पड़ा। तो जब तो घर भी नहीं था तो और गरीब भी बहुत हो गए थे, परंतु इसमें जो टैलेंट्स थे, जो विशेषताएं थी वो बाबा को पता थी। तो बाबा ने उसको कहा कि आप ओम की ध्वनि करो, जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी ओम की ध्वनि करो। तो ओम की ध्वनि जैसे करती थी तो इनसे राधे का साक्षात्कार होने लगा। तो जैसे कृष्ण और राधे दोनों खड़े हैं, राधे कृष्ण, ये तो 16-17 साल की थी और बाबा तो 60 साल के थे। तो वो तो जैसे बाप बेटी या पोती और दादा का हिसाब था, तो इसीलिए दोपहर राधे कृष्ण जैसे सामने खड़े ऐसे अनुभव होते थे। तो बाबा गीत लिखते थे और वो तर्ज निकाल करके वो गाती थी, सितार बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी, तो बहुत कलाएं थी। तो कैसे वो जब गीत गाती थी तो इनको देख के सब कैसे बिल्कुल मग्न ये मुक्त हो जाते थे, लगदम मुक्त हो जाते थे। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति रही। और उसके बाद ये दूसरी जो बहन थी दादी प्रकाशमणि, जिनका नाम रमा था, वो भी 14-15 साल की थी, वो भी स्कूल पढ़ती थी, लेकिन उनको घर बैठे साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का। उसने साक्षात्कार किया और फिर देखा ब्रह्मा बाबा आगे, और कृष्ण कह रहा है कि मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। लेकिन इसको तो बाबा कौन है ये पता नहीं था। तो स्कूल में जब गई तो उस समय लड़कियों के बीच में यह एक बात फैल गई कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो सब लड़कियां जो स्कूल की थी, क्लास की थी, सब ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और देखेंगे। और ये जब अपने कहा मैं अपने पिता से पूछूं कि अगले दिन जाएंगे देखेंगे, तो पिता से पूछने ही गई थी, लेकिन पिता ने उसको पहले कह दिया कि बेटी यहाँ एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाते हैं उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। क्योंकि ये भी बहुत भक्ति करती थी, बहुत भक्ति करती थी, श्री कृष्ण की विशेष भक्ति करती थी और गीता पढ़ती थी। तो आप जाओ और देखो कि वहाँ कृष्ण के दर्शन कैसे होते हैं। तो अगले दिन ये पूरे अपनी लड़कियों के संगठन में वो सब मिल करके बाबा के पास गए, और जैसे बाबा को देखा, बाबा को देखते ही वो ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करके वो जैसे रास करने लगी। तो अब सारा सत्संग पूरा हो गया, सब चले गए, लेकिन ये वहाँ बैठी थी। अब इनके पिता को बाबा जानते थे, इनके पिता ज्योतिषी थे, छोटा सा शहर था हैदराबाद सिंध, तो सब बड़े लोग एक दो को जानते थे। तो इनके पिता ने, वो ज्योतिषी थे, उन्होंने ये इनका इनकी जन्म पत्री निकाली थी कि मेरी बेटी मीराबाई की तरह बनेगी, माना अपना जीवन भगवान को अर्पित करेगी जैसे मीराबाई ने किया, तो ये मेरी बेटी भगवान की हो जाएगी। तो अब जैसे ही इसका पता चला कि ये तो कृष्ण का दर्शन किया, तो बाबा ने इनको कहा कि आप एक, बाबा उस समय एक स्कूल बनाया था बच्चों का, लड़कियों का स्कूल बाबा चलाते थे, जिन लड़कियों को थोड़ा ज्ञान भी सुनाना होता था, गीता का भी पाठ कराना होता था, ताकि वो विद्या के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक बातें भी उन लड़कियों को मिले। तो एक बोर्डिंग स्कूल बाबा ने खोला था। तो बाबा को एक टीचर्स की ज़रूरत थी, तो बाबा ने इनको कहा कि आप टीचर बन जाओ और इनको गीता का पाठ कराओ, उसके लिए अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित कर दो, भगवान को अर्पित कर दो। तो इसने अपने पिता से पूछा, तो पिता ने कहा कि आपका जीवन तो वैसे ही आपकी आपकी जो भविष्य, आपका भविष्य तो उनको अर्पित ही है। तो पिता ने से छुट्टी दे दी और वो भी बाबा के पास ऐसे रहने लगे। तो इसी प्रकार एक छोटा सा ईश्वरीय परिवार बन गया, अलौकिक परिवार, जो बाबा के पास आए और बाबा के घर में समर्पित हो गए। तो ये सब अधिकतर कुमारियां ही थी जिन्होंने भगवान को जैसे अनुभव किया। और फिर तो धीरे धीरे वो ज्ञान में आगे बढ़ती रही। अब बोर्डिंग स्कूल में भी बच्चियां जाती थी। और फिर शिव परमात्मा ने एक आदेश दिया सबको, क्योंकि शिव परमात्मा की प्रवेशता होती थी ब्रह्मा बाबा के तन में और वाणी चलाते थे, तो वो वाणी सुन करके भी उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। तो बाबा ने अब जब एक आदेश दिया कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, तो पवित्र और योगी बनाओ ये जब कहा, तो ये भी समाज में पता चल गया कि बाबा ने उन कुमारियों को कहा कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये छोटी छोटी बच्चियां अगर ये पवित्र बनेगी, योगी बनेगी, तो फिर संसार कैसे चलेगा। तो बहुत विरोध किया कि ये बाबा ने ऐसे क्यों कहा। तो बाबा ने कहा ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर अपने आप करा रहा है। मुझे भी कहा पवित्र योगी बनो, तो मैं भी तो गृहस्थी था, तो मैंने भी अपना जीवन पवित्र योगी बनाया। परिवार में तो रहता ही था, परिवार भी साथ में ही था। तो इन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की, भगवान ने जो प्रतिज्ञा कराई, तो विरोध बहुत हुआ। तो फिर बाबा है जो भी जो समर्पित हुए उनको बाबा हैदराबाद सिंध से कराची ले गए। तो कराची बड़ा शहर था, जैसे पूना और मुंबई, मुंबई तो बड़ा शहर है, पूना उसकी भेंट में छोटा था। तो पूना तो हैदराबाद पहाड़ों पहाड़ी इलाका था, और कराची वो सागर का किनारा है। तो वहाँ ले गए बाबा इनको, और रोज सवेरे सागर के किनारे ये जा कर के एक्सरसाइज करते थे। तो शर्ट और शॉर्ट्स ये उनके लिए बनाया, तो एक्सरसाइज भी करते थे सागर के किनारे और तपस्या भी करते थे। तो ये वहाँ पर कराची में क्लिफ्टन बीच है, सागर का किनारा बहुत सुंदर है कराची में। तो वहाँ वो रोज सुबह जा कर के ऐसे तपस्या करते थे। तो 14 साल इन्होंने तपस्या की कराची में, 1936 में ये शुरू हुआ, तो 37 to 1950 लगभग 13-14 साल उन्होंने दुनिया के वाइब्रेशन से दूर, बिल्कुल आइसोलेशन में, बिल्कुल अलग एक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और इन्हीं 14 सालों में दुनिया में परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन आया। सबसे पहला परिवर्तन आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से लेके 1945 तक हुआ, लगभग 6 साल तक विश्व युद्ध चला, दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो ये न्यूज़ तो सब जगह जाती थी कि कैसे विश्व युद्ध हो रहा है, वो यूरोप में हो रहा था, तो जर्मनी जापान ये सब और इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध जैसे लड़ रहे थे, और आखिर जापान और जर्मनी हार गया और अमेरिका को समर्पित हुए, सरेंडर हो गए, तब विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इतना भयंकर विश्व युद्ध हुआ 39 से 45 तक। तो और उसके बाद उसमें लाखों लोग जो मारे गए, तो बाबा से पूछते थे, बाबा इतने लाखों लोग मारे गए हैं क्या यही विनाश है? तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, जैसे फाइन जैसे फिल्म से पहले ट्रेलर चलता है ना, तो ये तो ट्रेलर है, जो सचमुच विनाश होगा वो तो अभी आने वाला है। और फिर उसके बाद 1947 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भी हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए, बहुत हिंदू लोगों का कत्लेआम हुआ। तो कैसे जो आते थे उनको उनको कहते थे या तो हिंदुस्तान जाओ, या तो मुसलमान बन जाओ, या तो सिर कटवाओ। अब हिंदुस्तान में कहाँ जाए, तो वो सिर का कटवा लेते थे, माना या तो मुसलमान बन जाते थे। मानो इतना केओस हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, तो फिर ये एक सिविल वॉर हो गया था, बिल्कुल उस समय का सिविल वॉर जबरदस्त था, खून की नदियाँ बही थी। तो भी बाबा से पूछा, बाबा ये क्या विनाश है? बाबा ने कहा नहीं, ये भी एक रिहर्सल है, एक ट्रेलर है, ग्रह युद्ध तो आना है, भारत में तो खून की नदियां बहने वाली है, ये भी बाबा ने कहा, अभी ये तो कुछ भी नहीं है। पर फिर तीसरा जो हुआ, बहुत चारों तरफ भूकंप आए और सुनामी, बहुत कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हुई उसी समय। तो भी बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या? बाबा ने कहा ये सब ट्रेलर है। तो तीनों जो साक्षात्कार बाबा ने किए थे, एटॉमिक वॉर का और सिविल वॉर का और नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, वो तीनों का वो ट्रेलर उन्होंने उन 14 सालों में देख लिया। और ये संस्था बिल्कुल आइसोलेशन में, भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित थी और तपस्या कर रही थी। फिर 1947 के बाद 1950 में, जब इंडिया पाकिस्तान का सब सेटलमेंट हो गया और गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद फिर शिव परमात्मा ने उनको आदेश दिया कि अभी भारत में जाओ। और भारत में जाकर के एक पहाड़ पर अपना बसेरा बनाओ, पहाड़ पर, क्योंकि कराची में थे तो कराची तो सागर के किनारे पर था, तो एक पहाड़ पर जाकर के ये सेवा आरंभ करो, जहाँ से सारे विश्व में शांति के प्रकंपना फैलाएंगे। तो माउंट आबू उन्होंने चुना, क्योंकि माउंट आबू कराची से बहुत दूर नहीं है। कराची से जैसे आते हैं तो वहाँ ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, बाई शिप अगर आते कराची से बिल्कुल नज़दीक है, और वहाँ से बाई ट्रेन ये आबू पर्वत है। और बाबा मामा तो बिल्कुल तपस्वी रूप थे, तो कैसे उन्होंने अपनी तपस्या जारी की, तो 14 साल कराची में तपस्या करने के बाद ये माउंट आबू उन्होंने स्थान चुना। तो ये माउंट आबू जो स्थान है, ये राजाओं महाराजाओं का गर्मी के दिनों का कैपिटल है। जो राजाएं महाराजाएं राजस्थान के थे, वो गर्मी के दिनों में अप्रैल मई जून यहाँ अपना कैपिटल बनाते थे, इसलिए माउंट आबू में बहुत महल है। आप देखेंगे जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, अलवर पैलेस, ये जो आप आए ना ज्ञान सरोवर, तो राइट हैंड साइड में अलवर पैलेस है। और जब 1950 में गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो जितने भी रियासतें थी राजाओं की, वो सब डेमोक्रेसी में विलीन हो गई, सबको सबकी राजाई ले ली और डेमोक्रेसी हो गई। तो उसके बाद जो उनके पास जो इतना प्रॉपर्टी थी, जो कुछ था, उनके ऊपर सीलिंग लग गई, वरना इतना नहीं रख सकते हैं। तो फिर तो उन्होंने क्या कर दिया, होटल बना दिए। तो ये सब अभी होटल है, जो भी पैलेसेस है, महल है, सब होटल्स है, या तो स्कूल्स है, बोर्डिंग स्कूल्स है। तो ये अलवर पैलेस भी एक बोर्डिंग स्कूल है, आर्य समाजियों का स्कूल है। या आप जाएंगे ना, देखेंगे, बाहर जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड पर वो बड़ा पैलेस है। तो इस प्रकार या तो स्कूल या तो होटल, ये माउंट आबू यही उद्योग है यहाँ का। और है तो टूरिस्ट प्लेस, लेकिन बहुत मंदिर है, चारों ओर मंदिर ही मंदिर है, तो ये तीर्थ स्थान भी है और साथ साथ टूरिस्ट प्लेस तो है ही है। तो ये माउंट आबू की विशेषता है। तो यहाँ आकर के स्थान लिया, और उस समय जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि 1947 में सब अलग हो गया, तो 1950 में तो सब वहाँ के स्टेट्स बन गए अलग अलग, तो सिंध प्रोविंस जो था उसका जो चीफ मिनिस्टर था वो बाबा का पुराना मित्र था। तो बाबा ने उनको कहा कि अभी हमको भगवान ने कहा है कि भारत में जाना है, क्योंकि ये उनको बाबा को ये सबको जैसे साक्षात्कार हुआ कि भारत में, भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत से ही फिर विश्व में शांति आएगी, भारत ही आधार बनेगा फिर से सृष्टि को स्वर्ग बनाने का। तो इसीलिए भारत में जाकर के वहाँ पर अभी शांति का संदेश सबको दो। तो कैसे कराची से वो भारत वो आए, और सब कुछ सामान ले जाने के लिए उनको छुट्टी मिल गई, क्योंकि जो हिंदू आए थे वहाँ से, कराची से या सिंध से, वो तो हाथ खाली आए, भाग करके आए, अपना सब कुछ, जमीन जायदाद धन संपत्ति सब छोड़ करके आए और भारत में आकर के रेफ्यूजी बने, पनाह ली। लेकिन इस संस्था को उनको परमिशन मिली कि आप अपना सामान भले ले जाओ, यहाँ तक कि उनको एक जहाज भी दिया, कि आप कराची से भारत जाओ, भले इस जहाज में अपना सब सामान लेकर के जाओ। तो वो फिर हिंदुस्तान में आए, ये जहाज में बैठे हैं और हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और यहाँ फिर ओखा बंदरगाह है, सी पोर्ट है ओखा सौराष्ट्र में, तो वहाँ पर उतरे और वहाँ से ट्रेन उनको मिली जो आबू रोड आती है। तो 14 साल के बाद दुनिया देखी उन्होंने। तो ये 1950 की ट्रेन है, उस समय सब ऐसे बाहर झांक के देख सकते थे, अभी तो शीक लगी हुई है, पर तो उस समय तो सब खुला था, खिड़की खोलो और बाहर झांक के देख सको। तो पहली बार 14 साल के बाद देखा। और फिर आबू रोड स्टेशन आए, अभी तो आबू रोड स्टेशन बहुत सुंदर बन गया है, उस समय तो वो स्टेशन भी कुछ नहीं था, ऐसे ही बस ट्रेन से उतरे सामान लेकर के। और फिर बाबा तो तपस्या करते थे, मम्मा भी तपस्या करती थी, और उसी तपस्या के बल पर कैसे आगे बढ़े। तो 1950 में भरतपुर राजा का महल है यहाँ, जैसे आप जहाँ जब आए होंगे तो टोल टैक्स भरा होगा माउंट आबू आने के लिए, तो वहाँ से ही रास्ता है जहाँ पर वो भरतपुर राजा का महल है, तो वो उन्होंने किराए पर ले लिया, तो वहाँ पर रहे। और 1952 में, क्योंकि 50 में आए, 52 में उनको निमंत्रण मिला दिल्ली से कि दिल्ली में आकर के ये ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने कुछ बहनों को भेजा दिल्ली में, और दिल्ली जाकर के वहाँ सेवाएं की। फिर वहाँ से कैसे भाई बहनें आते रहे, तो ये भी एक शुरुआत हो गई। माउंट आबू में पहला हमारा केंद्र बना, फिर उसके बाद दिल्ली में बना। तो ये कुछ बहनें हैं हमारी, ये दादी मनु और इंद्रा है जो यहाँ पर ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर थी, भी कुछ साल पहले इन्होंने शरीर त्याग किया। तो इनके फैमिली वालों ने, दिल्ली में रहते थे, उन्होंने निमंत्रण दिया। तो ये जैसे दिल्ली गई, वहाँ पर वो लेक्चर देने लगी, भाषण करने लगी, तो इनसे देवी का साक्षात्कार होने लगा। देवी, यहाँ तो लोगों ने कह दिया देवी आई है, पहाड़ों से देवी आई है, पहाड़ों से देवी आई है, तो बहुत आते थे ज्ञान सुनने के लिए। मंदिरों में निमंत्रण मिला तो वहाँ भी जाकर भाषण करती थी, फिर जमुना के किनारे दिल्ली में भी वो प्रवचन करती थी। और एक महीने तक खूब सेवा की दिल्ली में, फिर बोला हम वापस जाएंगे। तो लोगों ने कहा वापस कैसे जा सकेंगे, हमको छोड़ करके हमको और ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने उनको कहा कि अगर उनको और सुनना है तो मकान लेकर के देवे, क्योंकि वो तो अपने घर में थी, तो मकान लेकर देवे। तो फिर वहाँ आकर के सुने, तो पहला सेवा केंद्र हमारा आबू से बाहर दिल्ली में खुला 1952 में। और फिर तो सारे भारत में धीरे धीरे खुलते गए। और जिन भाई बहनों ने जो समर्पित किया था 14 साल तपस्या की, उन सबको बाबा ने अलग अलग स्थानों पर भेजा और भारत में हमारे सेवा केंद्र खुलते गए। तो ये सब जो माउंट आबू में भाई बहने आए हैं उनका ये फोटोज है। और मम्मा फिर भारत में आबू से बाहर जाती रही, तो ये मम्मा लखनऊ में गई है। तो मम्मा को लखनऊ में जहाँ जाती थी, जैसे वो जाती थी, लोगों को मम्मा से लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था, मानो इतनी भीड़ जमा हो जाती थी। तो ये साक्षात्कारों की धूम बहुत मच गई, ये भी एक क्रांति थी। और उसमें फिर महिलाओं को, बहनों माताओं को भगवान ने आगे किया, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और साक्षात्कार जो इतने हुए वो भी इतनी बड़ी क्रांति थी। और धीरे धीरे ये संस्था बढ़ती गई। फिर मम्मा कल कानपुर में गई, यूपी में, दिल्ली के बाद यूपी में सेवाएं शुरू हुई, फिर मुंबई में, बेंगलोर में, अभी तो 140 देशों में अपनी सेवाएं हैं, भारत में भी हजारों सेवा केंद्र हैं। लेकिन मम्मा धीरे 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 अव्यक्त होने लगी, जैसे देह से न्यारी होने लगी और 19 अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करती गई, और कैसे 1965 24 जून को 47 इयर्स की एज में उन्होंने अपना देह त्याग किया, वेरी यंग 47 इयर्स की एज में अपना देह त्याग किया 24 जून को। फिर उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बहनों को ही आगे रखा था, क्योंकि शिव परमात्मा ने उनको आदेश दिया कि जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है चल अचल वो सब बहनों को विल कर दो, तो अपना सब कुछ माताओं बहनों को विल किया, और तो बहनें ही एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। तो ये मनमोहिनी दीदी है जो बहुत बड़े घर की थी, बहुत रिच फैमिली की थी, परंतु इनको भी बाबा से साक्षात्कार हुआ और अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बहुत होशियार थी, तो इन्होंने संभाला। और फिर बाबा भी जाते थे बाहर, ये बाबा दिल्ली में गए हैं तो बच्चे छोटे छोटे बाबा के आगे गीत गा रहे हैं। और फिर वो सब माउंट आबू आते थे, ये जलंधर से आए, पंजाब में हमारे बहुत सेवा केंद्र खुले, ये पांडव भवन आप जाएंगे तो वो देखेंगे आप। और फिर ये जलंधर सहारनपुर ये सब तरफ से भाई बहन आए हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो अलौकिक पिता के रूप में थे, जिन जो कैसे बाबा पालना करते थे हर प्रकार से, और जाते समय बाबा कैसे विदाई देते थे। लेकिन ज्ञान सबके लिए एक ही था कि परमात्मा एक है, उसको याद करो, आप अपने आप को आत्मा समझो, और शिव परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। तो यहाँ जाति पाति भाषा धर्म इन सब जो भी बातें, इन सब से परे एक परमात्मा को याद करो, यही ज्ञान दिया। ब्रह्मा बाबा पत्र भी बहुत लिखते थे, ये बाबा की हैंडराइटिंग थी उर्दू जैसी, सिंधी भाषा लिखते थे, फिर एक बहन उसका हिंदी वो लिखती थी। तो अब पांडव भवन जाएंगे तो पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा बैठ करके ये से पत्र लिखते थे, और आसपास बगीचा है बहुत अच्छा, तो वो भी आप देखेंगे जब पांडव भवन जाएंगे। बाबा की झोपड़ी में दिन में बाबा बैठते थे, ये बाबा का हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे। इस हिस्ट्री हॉल में बाबा की जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं वो इसी हॉल में चलती थी, तो वो भी आप देखेंगे जब पांडव भवन जाएंगे। और ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, वो भी आप देखेंगे जा कर के। और फिर कैसे 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपना देह त्याग किया 93 वर्ष की उम्र में, 93 इयर्स की एज में बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपना देह त्याग कर अव्यक्त हुए। तो ब्रह्मा बाबा का पार्थिव शरीर कैसे आश्रम के अंदर ही पांडव भवन में वहाँ अंतिम संस्कार हुआ, और वही उनका मेमोरियल बनाया है वहाँ शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ पर हम सब जाते हैं, और खास करके 18 जनवरी पर जो बाबा का स्मृति दिवस है वहाँ पर बहुत तपस्या करते हैं। तो ये शांति स्तंभ है जहाँ पर बहुत तपस्या चलती रहती है। तो ये चार ब्रह्मा बाबा के हम कहेंगे कि या तीर्थ स्थान है, चार धाम है, तीर्थ स्थान है, एक बाबा का कमरा, दूसरा शांति स्तंभ, तीसरा बाबा की झोपड़ी, और चौथा हिस्ट्री हॉल। ये चार धाम ब्रह्मा बाबा के चार धाम है। आप पांडव भवन जाएंगे तो ये चारों धामों की आप यात्रा करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद दादी प्रकाशमणि जो जिन्हों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ था, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला 69 टू 2007, 38 सालों तक उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, या फोटो देख रहे हैं, 85 साल की उम्र में आपने अपना देह त्याग किया। और परंतु जब जब मम्मा अव्यक्त हुए तो मनमोहिनी दीदी, और फिर बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि, तो दोनों ने मिल करके इस संस्था को दिन दुगनी रात चौगनी गति से बहुत आगे बढ़ाया। विदेशों में हमारे सेवा केंद्र खुल गए 70 के बाद, और धीरे धीरे कैसे ये संस्था आगे बढ़ी। तो इन दोनों बहनों को, दादियों को हम कहते हैं ये दो हंसों का जोड़ा था, इतना उनकी आपस में सूझबूझ थी, जो कभी भी ऐसे नहीं एक ने कहा दूसरे ने उसका विरोध किया। दोनों कैसे मिल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इतना आगे बढ़ाया, जो हमारे हजारों सेवा केंद्र खुल गए। और जो उस समय की बहनें थी जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उनको हम दादियां कहते हैं, दादियां ओरिजिनल जो हमारी बहनें थी। तो ये सब दादियों ने कैसे अलग अलग स्थानों पर जाकर के सेवाओं को आगे बढ़ाया। तो ये, और फिर 1972 में हमारा विदेश में लंदन में सबसे पहला सेवा केंद्र खुला, और 74 में पहला ग्रुप लंदन से माउंट आबू आया, विदेश का ग्रुप। फिर तो और आते गए, और 1983 में पांडव भवन के सामने ये ओम शांति भवन बना, तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की है। और फिर उस एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बड़ी सफल हुई, जिसमें साधु संतों को बुलाया था, तो संतों के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनें सफेद वस्त्रधारी और वो गेरुए वस्त्रधारियों का इतना सुंदर समागम हुआ, वो भी एक इतिहास बन गया। और फिर 91 में जो ज्ञान सरोवर ये जो है इसकी जमीन मिली माउंट आबू, और ये ज्ञान सरोवर परिसर बना, और 95 में इसका उद्घाटन हुआ। फिर 91 में ही पांडव भवन के पास 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, जहाँ पर गांव-गांव की सेवा होती है, गांव-गांव में मोबाइल वैन्स लेकर जाते हैं और गांव-गांव की सेवा करते हैं। तो वो भी 91 में तैयार हुआ। और फिर नीचे डायमंड हॉल है अपना, जहाँ पर 20,000 से अधिक भाई बहनें बैठ सकते हैं, तो वहाँ भी हमारा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने कैसे शांतिवन को आगे बढ़ाया और ये ज्ञान सरोवर को आगे बढ़ाया। और 25 अगस्त 2007 को 85 वर्ष 85 ईयर्स की आयु में दादी प्रकाशमणि जी ने अपना देह त्याग किया, और उनकी निमित्त वहाँ उनका शांतिवन में प्रकाश स्तंभ है, जहाँ उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया आश्रम के अंदर ही। तो जैसे ज्ञान पांडव भवन में शांति स्तंभ है, दादी प्रकाशमणि जी का यादगार स्थान प्रकाश स्तंभ है शांतिवन में। और फिर दादी जानकी जी जो शुरू की दादी थी, वो भी देश विदेश में बहुत सेवाएं की, विदेशों में रह करके जहाँ जहाँ जिस जिस देश में जाती थी वहाँ सेवा केंद्र खुल जाते थे, तो ऐसे 140 देशों में सेवाएं की। तो दादी जानकी भी बहुत एक्टिव थी। नीचे हमारा मनमोहिनी, ये नीचे दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ दादी जानकी जी ट्रेनिंग देती थी टीचर्स बहनों को, कुमारियों को, वह ट्रेनिंग्स चलती रहती है। और फिर 1,00,000 की सभा में भी दादी जी और दादी जानकी जी ने प्रवचन दिए हैं, और धीरे धीरे ये वृद्धि होती गई। तो दादी जानकी जी के साथ दादी हृदय मोहिनी जी, वो भी साथ में थे, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। दादी जानकी जी ने अपना देह त्याग किया 2020 में, अभी 2020 में, और फिर दादी हृदय मोहिनी जी बने, और दादी हृदय मोहिनी जी ने अपना देह त्याग किया 2021 में। दादी जानकी ने 104 साल की आयु में अपना देह त्याग किया। दादी हृदय मोहिनी जी ने 95 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग किया। और दादी हृदय मोहिनी की विशेषता थी, वो ट्रांस में जाती थी, और शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा उनके तन में प्रवेश होकर के अव्यक्त वाणी चलाते थे। वो अव्यक्त वाणी हम लोग हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल में आती थी। किन्होंने देखी होगी, जिन्होंने देखा होगा हाथ उठाए, हाँ थोड़े हाथ उठाए, अच्छा सबने देखा है, वेरी गुड। तो और फिर जिसको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त वाणी उनके मुख द्वारा शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा सुनते थे। फिर उसके बाद दादी रतन मोहिनी जी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी 2020 से 21 से लेकर 25 तक, क्योंकि 2025 में इन्होंने अपना देह त्याग किया 101 साल की उम्र में। अभी इन्होंने पिछले साल ही अपना देह त्याग किया। और इसके बाद हमारी जो वरिष्ठ बहन है जो न्यूयॉर्क में भी रहती है, अमेरिका में रहती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और जयंती बहन हमारी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो ऐसे ये बहनों द्वारा कैसे ये सारा कार्य चलता है, परमात्मा अपना कार्य बहनों द्वारा करा रहे हैं ताकि सहज ही ये सृष्टि का परिवर्तन हो। और हम अभी देख तो रहे हैं क्या हालतें हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन ऐसे लगता है कि ये बढ़ेगा, लड़ाई इतना जल्दी बंद होगी नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी वो अटैक कर रहे हैं, सारे जो भी देश है ये लेबनन को या कुवैत, ये क्या बारेन को, दुबई को, सबको अटैक कर रहे हैं। तो ये लड़ाई तो और बढ़ेगी, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के संकेत है, सृष्टि परिवर्तन के संकेत है। इसीलिए शिव परमात्मा में रोज यही प्रेरणा देते हैं, बच्चे जल्दी तैयार हो जाओ, अब घर चलना है, अब घर चलना है। तो इसीलिए परमात्मा को याद करो, अपने विकर्मों का विनाश करो, और इस अपने आप में परिवर्तन लाओ, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमारा नारा है। तो कई कहते हैं आप लोग इतना अच्छा ज्ञान देते हो, आपकी फीस क्या है? तो हम कहते हैं हमारी फीस है 5 खोटे पैसे। कौन से खोटे पैसे? हाँ, कौन से खोटे पैसे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बस ये आप दान दो। तैयार हैं? जो समझते हम तैयार है हाथ उठाओ, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा। अरे वाह, सबने हाथ उठाया, फिर तो मनुष्य से देवता बने कि बने सब। हाँ, बने बनाए देवता है, तो अपने लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत दीदी का धन्यवाद। सब एक बार ताली बजा के दीदी का धन्यवाद करें। बहुत सुंदर तरीके से, धैर्यता से पूरे संस्था का चित्र 36 से लेकर 2026 तक पहुंच गए हम।
90 साल का इतिहास 90 मिनटों में करा लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और जितनी शालीनता से, धैर्यता से शीलू दीदी ने बताया, जैसे हम उस चरित्र पर पहुंच गए, क्लिंफ्टन भी पहुंच गए, अखंड भारत पाकिस्तान सिंध भी पहुंच गए, बाबा को भी देखा, और कृष्ण का साक्षात्कार, देवी देवताओं का साक्षात्कार, इन्हीं शुद्ध भावनाओं से कि ये साक्षात्कार बहुत जल्द आपसे भी सबको हूँ, यही ये भावना है। और बहुत सुंदर ये कहा गया कि ओम न होता तो ओंकार न होता, ओंकार न होता तो निराकार न होता, निराकार न होता तो ये साकार न होता, और साकार न होता तो ये सारा संसार न होता। हम सब उन्हीं की संतान, आज जिनके भी आपने चित्र देखे हैं ये सब हमारे पूर्वज हैं, और जरूर इन्होंने ही आपको यहाँ बुलाया है। तो उनका हृदय से धन्यवाद करते हुए 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।